श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 21 श्लोक संख्या 9 दिनांक 18 अप्रैल 2015 स्पीकर आदि प्रभु
वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुत पदकमल श्री गुरु न वैष्णवंस श्री रूपं साग्र जातं सागन रघुनाथ नितं तं सजीवं साधयितं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं राधा कृष्ण पादान सगन ललिता श्री विशाखानुतंस हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तत्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे
श्री श्री राधा गिरिधरि भगवान की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की समवेत भक्त वृंद की श्रील प्रभुपाद की। तो आज के जो प्रसंग है बहुत ही गहरा है क्योंकि ये गोपियों का मर्म का एक प्रकार का वाणी है। गोपियों द्वारा कृष्ण की जो वेणुगीत का वेणुका सराहना की गई है एक प्रकार ये जो विषय है गोपियों का हृदय की वेदना है। गोपियों का जो मर्म है मर्म की व्यथा है मर्म की वेदना है। किस प्रकार ना गोपियाँ ये देख रही है जिस प्रकार ये बांसुरी कितने निकट है कृष्ण के ये ईर्ष्या नहीं कर रही है। आप देखेंगे ये अध्याय का जो सातवां श्लोक है वहाँ से लेकर आगे जितने सारे गोपियों का जो गोपी ऊँचू गोपी ने जो कहा है वो एक प्रकार कृष्ण को न मिल पाने की और कृष्ण के निकट न होने पाने की जो कष्ट है एक कष्ट जो कष्ट एक प्रकार उनके वाणी के रूप में प्रकाश हुआ है। तो गोपियाँ यहाँ देख रही है किस प्रकार ये जो बांसुरी है कृष्ण की कितने निकट में है। हाँ और इस प्रकार का देख करके वो अपने को कितने हीन समझ रही है कितने नीच समझ रहे हैं हम कितने कृष्ण के सानिध्य प्राप्त नहीं कर पा रहे। कभी ऐसा मौका मिले तो भगवान ऐसे मौका हमें दे तो हमें ऐसे अवसर दे तो हमें कृष्ण की सानिध्य प्राप्त कर पाते हैं लेकिन ये बांसुरी हमेशा कृष्ण को छोड़ते नहीं है हमेशा कृष्ण के साथ ही रहते हैं तो हमसे ये कितने भाग्यवान है। हाँ तो इस प्रकार का जो गोपियों का जो वाणी है ये इस अध्याय है। इस अध्याय का प्रकाश गोपियों की कष्ट है ये कष्ट उनको अनुकूल है। कोई प्रकार के प्रतिकूल किसी के प्रति द्वेष आक्षेप न करके कोई विरोध आक्षेप न करके हाँ गोपियों ने इस प्रकार का सराहना की। यहाँ पर कोई निंदा नहीं सराहना की क्योंकि भक्तों के हृदय में जो बात होती है वो भक्ति के अनुकूल होती है। तो गोपियों के हृदय में बांसुरी का बंसी का जो इस प्रकार का भाग्य है हाँ तो भाग्य गोपियों के मुख कमल से हाँ उनका बढ़ाई के रूप में प्रकाशित हुआ है। जब भगवान श्री कृष्ण ब्रजधाम में प्रकट हुए थे और भगवान के श्रीमुख से जो बांसुरी की ध्वनि है इतने ललित है इतने मधुर है और इतने मनोहर है प्राय वृंदावन के हर किसी को आकृष्ट कर रही थी। वृंदावन के जंगल, पेड़ पौधे, नदी, पर्वत, पहाड़, कुसुम सरोवर, मानसी गंगा, आगे जाके प्रभुपाद जी के शिष्य ने ऐसे बताए, एक मानसी गंगा, कुसुम सरोवर अपने स्थान छोड़ करके तो कृष्ण के चरण कमल का आलिंगन करना चाहती थी। नदियां अपने मार्ग को होड़ करके, अपने जो नदियां जो मार्ग में चलती है वो मार्ग को बदल करके वो कृष्ण के चरण का आलिंगन करना चाहती थी। कृष्ण की बांसुरी ध्वनि इस प्रकार के गहरा छाप हर जीव के भीतर डाल रही थी, प्रकाश छाप दिखा रही थी, क्योंकि उनकी वो आवाज ऐसे है ब्रह्मा इंद्र को भी विचलित कर देती थी। देवताओं के पत्नियां भी जब कृष्ण की बांसुरी ध्वनि सुनते थे वो भी शुद्ध बुद्धि खो बैठते थे। अपने पति के साथ होते हुए भी वो कृष्ण के प्रति माधुर्य भाव में काम वासना उनके हृदय में जागृत हो जाती थी। कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि इस प्रकार का मादकता है। तो ये जो कृष्ण की बांसुरी ध्वनि है ये वृंदावन के हर किसी को आकृष्ट करता था। बच्चे हो, बालक हो, वृद्ध हो, युवती हो, क्या वृद्धा गोपी हो, वृद्ध हो, किसी को भी, ये वृंदावन का विशेष महत्व है। भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी का ये विशेष महत्व है। ब्रह्मा जी अपने ब्रह्म संहिता में भी यही बात बताते हैं, वेणुं कणंत मरविंद अरविंद दलाय तख्यं। तो भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी का जो ध्वनि है ब्रह्मा जी कहते हैं ये एक अद्भुत है, हर किसी को अपने तरह आकर्षित करता है। भगवान का जो भी कुछ है वो अमृत है। गोपियां यहाँ पर कह रही है कि ये बांसुरी भगवान का अधरामृत का पान कर रही है। तो भगवान के जो भी कुछ है ये अमृत है। उनके दर्शन भी अमृत है, उनका कथा भी अमृत है, उनका चरण अमृत है, उनका प्रसाद अमृत है। जो भी देखो, प्रसाद अमृत, चरणामृत, दर्शनामृत, प्रसाद अमृत, सब कुछ उनका अमृत है। तो आज के प्रसंग में गोपियां ये कह रही है, ये बांस को जो जन्म दिया, बांस कितने कैसे कहाँ पे जन्म ले लेता है, लेकिन कहाँ बैठा है, भगवान श्री कृष्ण का अधर में। अब जो नदियां ये बांस को जल दे करके उनको पोषण किया, ये नदियां कितने भाग्यवान है, और ये बांसुरी का जो दादा परदादे हैं वो कितने भाग्यवान है, वो भगवान की संगति कर रहा है, ये वो लोगों के वंशज कितने भाग्यवान है। तो कहने के अर्थ ये गोपियां का भाव ये है आज के प्रसंग में, किसी ना किसी प्रकार जीव को कृष्ण के साथ संपर्क जोड़ लेना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने संपर्क को जोड़ लेता है तो भाग्यवान बन जाता है, लेकिन कलयुग में सब कोई हतभागा है। कि जैसे कृष्ण के साथ हमें आ जाते हैं भाग्यवान बन जाते हैं, लेकिन प्राय कलयुग में यही बात दिखा जाती है, कलयुग में प्राय लोग हतभागे हैं। भागवत में ये बात बताया गया है, प्रायण अल्पायुष कड़े अस्मिन योगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रता। कलयुग में प्राय लोग हतभागे हैं, क्यों ना आध्यात्मिक दृष्टि से हर कोई अंधे हैं। इसीलिए भागवतों में क्या बताया गया, कले नष्ट दृशाम एस, कलयुग में हर कोई अपने दृष्टि को खो चुके हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से वो अंधे हैं। इसीलिए ऐसे अंधे व्यक्ति को दृष्टि प्रदान करने के लिए, दिखाने की शक्ति देने के लिए तो क्या प्रकाशित हुआ ना, पुराण अर्क अधुना उदित। ये जो भागवतों में ऐसे आध्यात्मिक दृष्टि से जो लोग अंधे हैं ऐसे दृष्टिहीन व्यक्तियों को दृष्टि प्रदान करने के लिए भागवतम प्रकाश हुआ। तो ये भागवतम क्या है, भगवान का एक प्रकाश रूप है, भगवान का एक रूप है ये भागवत। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा भागवत पढ़ो जाए भागवत स्थान है। भागवत को समझना है कहां से, न भक्तों की संग से, भक्तों की संग में भागवत को समझा जा सकता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों के साथ भागवत को समझने के लिए, पाठ करने के लिए आदेश दिए हैं। इसलिए हमें देखें हैं कि कलयुग जब संसार में प्रवेश किया कली में आगतम, तो नैमिषारण्य में भागवतम का जो कथा हुई थी वो कथा में सुत गोस्वामी पाजी जब कथा कह रहे थे तो वहां पर कितने लोग बैठे थे, 88,000 मुनि ऋषि लोग बैठे थे। और सबका चेतना अलग अलग थी, लेकिन जो एकता यूनिटी जी फोर्स जहां पर भक्त एकत्रित होकर के भगवान की कार्य करते हैं वहां पर कली प्रवेश नहीं कर पाती है। इसीलिए आगे के लोगों को दिखाने के लिए नैमिषारण्य में जो ऋषि मुनि लोग बैठे थे तो वो देखें बता दिए कि साथ में बैठ करके भागवत का श्रवण करना चाहिए। कलियुग आत्म साक्षात्कार के लिए तनिक भी अच्छा नहीं है, लेकिन भागवत के द्वारा कलियुग में कोई व्यक्ति आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। इसीलिए वो लोग 1000 साल तक, एक लंबे समय तक भागवत का सुनने के लिए अपने को तैयार किए, 1000 साल तक भागवत सुनने के लिए अपने को तैयार किए। जब कोई व्यक्ति भगवत गीता समझ लेता है और अधिक प्रकाश प्राप्त करने के लिए या आत्म साक्षात्कार की बल को बढ़ाने के लिए वो भागवत का पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। लेकिन ये भागवत को समझना है कैसे, ना महत्व पद सेवया पुण्य तीर्थ निसेवणा। हाँ, जब हम महत्व की सेवा करेंगे तब जाके हमें भागवत को समझ पाएंगे। ऐसे महान लोग निसेवणा समस्त प्रकार पूर्ण रूप से इस संसार के कलमश से मुक्त हो चुके हैं, ऐसे महानों का सेवा जब हम करेंगे तब जाके हमें भागवत को समझ पाएंगे। क्योंकि वो लोग पुण्य तीर्थ, हाँ वो लोग तीर्थ है, भगवान के महान भक्त जो है एक प्रकार के तीर्थ है। अरे ऐसे लोगों की संग जब हम करेंगे, संग में बैठ करके जब भागवत श्रवण करेंगे तब जाके हमें भागवत को समझ पाएंगे, नहीं तो भागवत को हम नहीं समझ सकते। जब भगवान श्री कृष्ण ना भगवान श्री राम निषाद राज के वहां गए थे, जब निषाद राज भगवान श्री राम की सेवा प्राप्त किए तो वहां पर निषाद राज कहे थे कि प्रभु जब से मैं आपका सेवा प्राप्त हुआ ये पृथ्वी का मैं भूषण बन गया। निषाद जो था जाति में बहुत हीन था, लेकिन जैसे भगवान राम का सेवा की अवसर प्राप्त किया तो उन्होंने कहा कि जब से मैं आपका सेवा में लग गया तो मेरा जीवन ही सार्थक हो गया, मैं भाग्यवान बन गया। यही बात भी चैतन्य महाप्रभु को कोलाबी से श्रीधर भी कहे थे, हाँ आप हमेशा हर जन्म में मेरे पास आओ और ऐसे हर्ट करते रहो। हाँ भगवान चैतन्य महाप्रभु जब उनको कहा कि श्रीधर तुम मेरे से कुछ बर मांग लो, लेकिन श्रीधर ने क्या कहा, जन्म हर जन्म में मुझे एक केले बेचने वाला श्रीधर बनाओ और हर जन्म में आप आकर के मेरे साथ हर्ट करो, यदि आप कुछ आशीर्वाद के रूप में देना चाहते हो तो यही आशीर्वाद मुझे दे दो। और भगवान चैतन्य महाप्रभु भी उनको यही आशीर्वाद दिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु उनको कुछ भी दे सकते थे, लेकिन भक्त श्रीधर क्या मांगा, मुझे इस प्रकार का के बर प्रदान करो, इस प्रकार का भाव में आपके साथ ये जो भाव है, इस प्रकार का भाव में जिस प्रकार का सुख है इंद्रपद में इस प्रकार का सुख नहीं है, इसलिए मुझे ऐसे ही रहने दो। इसलिए कुंती महारानी कहते हैं कि केवयं नाम रूपाभ्यं जदुवीस पांडव भवत अदर्शन जय हृषि कणाम ईर्षितु। हे प्रभु जैसे कोई जीव के शरीर से आत्मा निकल जाती है, आत्मा निकल जाने के बाद उनका शरीर मिट्टी में मिट्टी हो जाता है, हाँ भले वो शरीर पहले से कितने जसोस्वी हो भाग्यशाली हो लेकिन जैसे आत्मा निकल जाती है शरीर से वो मिट्टी हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे आप ये पांडवों और यादवों को छोड़ दोगे तो ये पांडवों और यादव का जो सारा संसार में ख्याति है, जस है, उनका जो भाग्य है वो मिट्टी में मिट्टी हो जाती है। ये पांडवों और यादव का भाग्य क्यों है, ना आप वो लोगों के साथ हो इसीलिए वो लोग भाग्यवान है। तो इसीलिए कुंती महारानी कह रहे हैं कि आप ये हस्तिनापुर में हो करके ये हस्तिनापुर इतने सुंदर लग रही है, त्वत पद अंकिता आपका चरण कमल ये हस्तिनापुर में है करके ये हस्तिनापुर इतने अच्छा लग रहा है, इसलिए आप लेकिन आप जब चले जाओगे वो ऐसा नहीं लगेगा। हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु को यही बात बताते हैं कि आप चले जाओगे लेकिन मेरा ये संसार में रहना उचित नहीं है। जब हरिदास ठाकुर को पता चला कि थोड़े समय के बाद चैतन्य महाप्रभु जाने वाले हैं तो फिर हरिदास ठाकुर ने यही प्रार्थना किया, लीला संबरी व तुमी लय मरे चीते, एक वांछा हय मर होय मोर, प्रभु मेरा हृदय में एक इच्छा है, मैं जान पा रहा हूँ कि आप लीला स्मरण कर लीला आप अप्रकट करोगे, इसीलिए आप ये लीला समाप्त करने के पहले मेरा ये शरीर को समाप्त कर दो। और चैतन्य महाप्रभु भी हाँ उनको ये आशीर्वाद दिए, और चैतन्य महाप्रभु के सामने हरिदास ठाकुर जी हाँ अपने शरीर को छोड़े, और चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को हाँ लेके जाते हैं और समुद्र जल में स्नान कराते हैं। प्रभु कहे समुद्र ही महातीर्थ होई लो। हाँ चैतन्य महाप्रभु जब हरिदास ठाकुर के शरीर को लेकर के समुद्र जल में स्नान कराएं तो कहे क्या कहे, प्रभु कहे समुद्र ही महातीर्थ होई लो। ये हरिदास ठाकुर इतने भाग्यवान है, उनका शरीर का स्पर्श पा करके समुद्र आज महातीर्थ बन गया। जो भी कोई हरिदास ठाकुर के विजय उत्सव में भाग लिया, जय या कैल कीर्तन नर्तन की उनका प्रसाद लिया, हाँ उनके समाधि में बालू दिया, वो सारे के सारे भाग्यवान है, क्योंकि हरिदास ठाकुर भाग्यवान है। जिनके पास भाग्य है वो किसी को भाग्य प्रदान कर सकता है, जिनके पास भक्ति है वो ही दूसरे को भक्ति प्रदान कर सकता है। और जब भक्ति कृष्ण भक्ति हृदय में प्रकट होती है वही समझ लेना मेरा भाग्य उदय हुआ है। कृष्ण भक्ति यही बात भी रामानंद राय बता कह रहे हैं कि कृष्ण भक्त ही एकमात्र भाग्यवान व्यक्ति है, इसीलिए कृष्ण भक्ति जब हम करेंगे तब जाके हमारा भाग्य उदय होगा। एक बार प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे ऑस्ट्रेलिया के, तो चलचित्र में अभिनेत्री थी। प्रभुपाद जी प्रचार करने के पहले प्रभुपाद जी के शरण में आने के पहले वो चलचित्र में काम कर रहे थे। अब प्रभुपाद जी जब गए ऑस्ट्रेलिया में गए और वो भक्त प्रभुपाद जी के शरण में आए, तो थोड़े समय के बाद ऑस्ट्रेलिया के एक पत्रकार ने लिख करके समाचार पत्र में लिख करके दिखाए कहें कि एक बहुत बड़े अभिनेत्री अभी बहुत बड़े भक्त बन गए, और वो समाचार पत्र में दो पोस्टर भी लगाए थे, उनका तस्वीर भी लगाए थे, एक जो मॉडर्न आधुनिक वेशभूषा में अभिनेत्री के हिसाब से और दूसरा भक्त के रूप में सेवा करते हुए दो उनके तस्वीर वो समाचार पत्र में प्रकाश किए। जब ये समाचार पत्र प्रकाशित होकर के बाहर आया तो प्रभुपाद जी के सारे शिष्य हैरान हो गए। तो और प्रभुपाद जी के शिष्य लोग सोचे कि ये अखबार ये समाचार पत्र को प्रभुपाद जी को दिखाना चाहिए, ले करके दिखाएं प्रभुपाद जी को। और प्रभुपाद जी जब उनके शिष्य वो माता जी थे तो उनका नाम था जगत तारिणी देवीदासी। तो प्रभुपाद जी जब देखे वो समाचार पत्र में उनका शिष्य का दो रूप में चित्र है, तो वो थोड़ा हंस दिए और हंस करके कहने लगे ये जो पहले जो चलचित्र में काम कर रही थी उनके जो वेशभूषा है वो वेशभूषा से इतना प्रसन्न नहीं लग रही है, उदास दिख रही है, लेकिन भक्त के रूप में जो भी ये जो चित्र है उसमें प्रसन्नता दिख रही है, वो सही लग रही है। और उसी दिन शाम को प्रभुपाद जी जब मंदिर में प्रवचन कर रहे थे तो प्रभुपाद जी के पास वो माता जी आए। हाँ और जब आए प्रभुपाद जी ने कहने लगे तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो, कृष्ण ने आपको सारे कृत्य से बचा लिए हैं। तो कहने की ये है गोपियों ने आज ये प्रसंग में यही कहना चाह रहे हैं कि यदि किसी को भाग्यवान बनना है तो कृष्ण के साथ अपने जीवन को जोड़ लेना चाहिए, कृष्ण के साथ अपने संपर्क को जोड़ लेना चाहिए। और जैसे कोई कैसे भी व्यक्ति हो, कोई वस्तु भी हो, जैसे कृष्ण के संपर्क में आ जाता है वो सुंदर बन जाता है। और यदि हमें हमारा जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं या भाग्यवान बनाना चाहते हैं तो हमें कृष्ण की भक्ति को अपनाना चाहिए, हमारे जीवन में कृष्ण का भक्ति को स्वीकार करना चाहिए, तभी जाके हमें भाग्यवान बनेंगे। तो आज ये भक्ति प्रदान करके हमें भाग्य देने के लिए चैतन्य महाप्रभु के एक महान भक्त संसार में प्रकट हुए थे, उनका नाम था गदाधर पंडित। ये गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु के विशेष अंतरंगा पार्षद है। पंचतत्वात्म कृष्ण भक्त रूप स्वरूप भक्तावतारं भक्तांके नमामि भक्त सत्तिकम। भगवान चैतन्य महाप्रभु इस संसार में प्रकट हुए थे पांच रूप में। भगवान चैतन्य जब इस संसार में प्रकट हुए हैं तो अपने को पांच रूप में विस्तार किए थे। उसमें से ये पांच शक्ति तत्वों में, ये पांच रूपों में से गदाधर जो है, गदाधर पंडित जो है, ये शक्ति तत्व है, राधारानी का विशेष अंश है। हमेशा कृष्ण, हाँ कृष्ण गोपियों को राधा रानी को छोड़ के चले जाते थे। तो राधा रानी जब देखते थे कि कृष्ण हमको हमेशा छोड़ के चले जाते हैं तो बहुत दुख अनुभव कर रहे थे। तो राधा रानी उस समय सोचने लगे, मैं ऐसा क्या कार्य करूं, क्या करूं जो कि हमेशा मैं कृष्ण के निकट में रहूं। और भगवान चैतन्य जब ये संसार में प्रकट हुए तो वही राधा रानी गदाधर के रूप में प्रकट हुए थे। और उस समय वो कभी चैतन्य महाप्रभु से अलग नहीं हुए। नवदीप लीला में हमेशा साथ साथ में रहे और नीलाचल लीला में, संन्यास लीला में भी गदाधर पंडित हमेशा चैतन्य महाप्रभु के साथ रहे थे। तो ये जो गदाधर पंडित है, ये राधा रानी का विशेष शक्ति तत्व है। एक बार ये अद्विताच चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित को लेकर के अद्वित आचार्य के वहाँ गए थे। जब अद्वित आचार्य के वहाँ पे गए थे, हाँ पहुँचे अद्वित आचार्य के घर में, हाँ तो अद्वित आचार्य चैतन्य महाप्रभु को देखते ही मूर्छित हो गए। हाँ सॉरी, अद्वित आचार्य को चैतन्य महाप्रभु देखते ही चैतन्य महाप्रभु मूर्छित होकर गिर पड़े। और अद्वित आचार्य समझ गए ये और कोई नहीं है, मैं जिनको इस संसार में बुला रहा था यही है, हाँ ये भगवान श्री कृष्ण है, हाँ ये चैतन्य के रूप में प्रकट हुए हैं। तुरंत चैतन्य अद्वित आचार्य एक श्लोक वहाँ पर गाते हैं, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करके अद्वित आचार्य उस श्लोक को गाने के बाद उनके बहुत सुंदर पूजा करते हैं। जब पूजा में लग जाते हैं तो वहाँ पर गदाधर पंडित जी कहते हैं, अरे आचार्य जी आप ये क्या कर रहे हो, ये निमाई एक बालक है, लेकिन एक बालक का आप पूजा कर रहे हो। तो गदाधर पंडित इस प्रकार का बात बता करके, वो इस प्रकार का लीला करके सारा संसार को आचार्य के मुख से, चैतन्य जो और कोई नहीं है भगवान है, ये बात को बताना चाहते थे। जदियो गदाधर जानते थे ये श्री कृष्ण है, लेकिन इस प्रकार का लीला करके वो सारा संसार को एक आचार्य के द्वारा भगवत तत्व को दर्शाने के लिए इच्छा किए। हाँ और गदाधर अद्वित आचार्य जी कहें, गदाधर आप जिनको बालक समझ रहे हो, ये बालक थोड़े दिन के भीतर आप समझ पाओगे ये बालक नहीं है, वो भगवान है। एक बार गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु बैठे थे तो गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु के पास एक पान लेकर के गए। और गदाधर पंडित पहुंचने के पहले चैतन्य महाप्रभु कृष्ण विरह में बड़े ही उन्मत्त थे, वहाँ पर बड़े मग्न थे, कृष्ण विरह में वो मग्न थे। उसी समय गदाधर पंडित वहाँ पर पहुंचे और गदाधर जी को देख करके कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का कृष्ण विरह और बढ़ गया। और चैतन्य महाप्रभु बोले कि गदाधर कृष्ण कहाँ है। तो ऐसे बातों में चैतन्य गदाधर पंडित जी कह दिए कि कृष्ण तो आपके हृदय में। जैसे ही गदाधर पंडित जी कह दिए कि कृष्ण आपके हृदय में, हाँ ये सुन करके चैतन्य महाप्रभु इतने ऐसे उन्मत्त होकर के अपने हाथ में वो अपने छाती को बिदारने लगे। इस प्रकार का बिदार रहते कि जैसे कि वो अभी अपने छाती को फाड़ देंगे, अभी बिदार कर देंगे। तो इस प्रकार जब कर रहे थे गदाधर पंडित जी चैतन्य महाप्रभु का दो हाथ को पकड़ लिए और उनको समझाते हुए कि अभी शांत हो जाओ, अभी कृष्ण आने वाले हैं, अभी आप स्थिर हो जाओ। जैसे गदाधर पंडित इस प्रकार का समझाएं तो चैतन्य महाप्रभु शांत हो गए। तो थोड़ी दूर सची माता खड़े थे, खड़े तो हंस पड़े, बहुत खुशी हो गए गदाधर जी के ऊपर। यदि वो समय निमाई भी बालक थे, गदाधर भी बालक थे। हाँ तो जब सची माता देखें कि गदाधर के समझाने से चैतन्य निमाई समझ गए, तो ये बात को देख करके सची माता बहुत खुश हो गए। मैं कितना समझाती हूँ, लेकिन वो नहीं समझ रहा है, लेकिन गदाधर समझा दिया तो समझ गए। हाँ सच्ची माता वहाँ पर आए और गदाधर पंडित को हाँ बड़े आशीर्वाद दिए, भले आप बालक हो, मैं कभी कभी ये डरती हूँ ये निमाई के सामने आने के लिए, लेकिन आप बालक हो, बालक होते हुए भी आप उनको समझा दिया और ये समझ गया, इसलिए आप उसको कभी हाँ अकेले मत छोड़ना, आप हमेशा उनके साथ रहना। तो गदाधर पंडित के बचपन से ही वैष्णव की दर्शन करने की उनके भीतर बहुत इच्छा थी, हमेशा वो महान वैष्णव की संग करने की, हमेशा वैष्णव की दर्शन करने की उनके भीतर इच्छा थी। जब मुकुंद दत्त एक बार आए गदाधर पंडित के पास और गदाधर पंडित को कहें चलो मैं आज आपको एक महान वैष्णव का दर्शन कराऊंगा, तो गदाधर पंडित को मुकुंद दत्त लेकर के जाते हैं पुंडरी की विद्यानिधि के पास। पुंडरी की विद्यानिधि वो समय चट ग्राम छोड़कर अपने गांव छोड़ करके चैतन्य के स्वरूप के प्रति आकर्षित होकर के नवद्वीप में आकर के रह रहे थे। जब मुकुंद दत्त गदाधर पंडित को लेकर के पुंडरीक विद्यानिधि के पास पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचने के पहले गदाधर जी ना मुकुंद दत्त गदाधर को कहे थे ये मैं आज जिनके पास आपको लेके जा रहा हूँ वो एक महान वैष्णव है। तो मुकुंद दत्त जब गदाधर पंडित जी को लेकर के वहाँ पहुंचे, तो वो समय पुंडरीक विद्यानिधि बाहर लोगों को एक ठगने के लिए है महान वैष्णव, लेकिन महान वैष्णव ऐसे होते हैं तो अपने भीतर कृष्ण भक्ति को दूसरे को दिखाते नहीं है। अब पुंडरीक विद्यानिधि के हृदय के भीतर कृष्ण भक्ति का इतना प्रबल थी तो वो भक्ति को भक्ति से वंचित करने के लिए बाहर लोगों को तो वो इस प्रकार का विषय जैसे रह रहे थे, जो कोई उनको देखेगा वो सोचेगा कि ये एक विषय व्यक्ति है। तो इस प्रकार बाहर लोगों को ठगने के लिए हाँ हमेशा बड़े ही ठान ठून में रहते थे, बड़े ही हाँ हमेशा अच्छे महंगे कपड़े पहन के रहते थे, अपने मेकअप करके रहते थे, हाँ हमेशा दामी दामी वस्तुएं व्यवहार करते थे। जब गदाधर पंडित जी पुंडरीक विद्यानिधि के पास जाके पहुंचे तो देखे हाँ ये तो बहुत बड़े सिंहासन में बैठे हुए हैं, दो पार्षद उनका चामर में मोर पंख में पंखा कर रहे हैं और वो एक आईना लेकर के अपने चेहरे को देख रहे हैं, हाँ वो मेकअप कर रहे हैं, हाँ तो और पान खा रहे हैं, सोने के पिकदानी में थूक रहे हैं। तो इस प्रकार का विषय जैसे भावभंगी देख करके गदाधर पंडित जी मुकुंद दत्त को कहने लगे भला वैष्णव दर्शन कराया मुझे आप ला करके यहाँ, क्योंकि गदाधर पंडित जी बचपन से ही विरक्त थे संसार के प्रति, हाँ विरक्त थे। तो ये जब आकर के इस प्रकार का देखे तो उनका हृदय में पुंडरीक की विद्यानिधि के प्रति जो एक प्रकार का सम्मान की भाव थी तो वो खत्म हो गया, वो मिट गया। और पुंडरीक की विद्यानिधि के चरित्र के प्रति उनका दोष बुद्धि दर्शन हुआ। जब गदाधर पंडित जी के भीतर इस प्रकार का चल रही थी तो मुकुंद दत्त समझ गए, समझ करके तो भागवत का एक श्लोक को गाने लगे। क्या वो श्लोक थी? अहोबकियम स्तन कालकूट। ये श्लोक को जैसे ही मुकुंद दत्त गाने लगे तो पुंडरीक की विद्यानिधि के भीतर कृष्ण के प्रति जो भक्ति है वो उनका लोम लोम से प्रकट होने लगी। वो जमीन जो सिंहासन में बैठे थे वो जमीन में गिर, सिंहासन से जमीन में जाके गिर पड़े और इस प्रकार वो जमीन को अपने नाखून के द्वारा बिदार रहे थे जैसे वो खून खून हो गए। हाँ अपने को मिट्टी के साथ अपने शरीर को इस प्रकार का रगड़ रहे थे, इस प्रकार घिस रहे थे, उनका सारा शरीर खून खून हो गया विद्यानिधि का। और इस प्रकार उनका कृष्ण भक्ति का प्रकट को देख करके गदाधर जी कहने लगे अरे मैंने क्या कर दिया, एक महान वैष्णव के प्रति दोष बुद्धि किया। अरे महान वैष्णव के प्रति जब दोष बुद्धि हमारा बुद्धि में आ जाती है बहुत बड़े अपराध हो जाती है। हाँ क्योंकि जो भक्त जितना भक्ति में प्रगत है ऐसे प्रगतिशील भक्त के प्रति यदि हमें दोष दिखेंगे तो हमारा भक्ति उतने ही हमें हाँ नीचे आ जाएंगे। तो अभी गदाधर पंडित जी समझने लगे, अरे मैंने क्या कर दिया, इतने बड़े भक्त है तो उनके प्रति मेरा इस प्रकार का भाव प्रकट हुआ, तो अभी मुझे क्या करना है। हाँ, तो उनके शरण स्वीकार करना चाहिए, उनका शिष्यत्व स्वीकार करना चाहिए। तो मुकुंद दत्त को गदाधर पंडित जी अपने हृदय में जो बातें हैं वो कहें कि ये अपराध की मार्जन के लिए, ये अपराध की क्षमा के लिए मुझे उनका शरण स्वीकार करना चाहिए, मुझे उनका शिष्यत्व को स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार का कह करके गदाधर पंडित और मुकुंद दत्त चैतन्य महाप्रभु के पास आके सारे बातें को बता देते हैं। और गदाधर पंडित जी चैतन्य महाप्रभु को बताते हैं कि मुझे तो अभी उनका शिष्यत्व स्वीकार करना है। हाँ, ये बात सुनकर के गदा चैतन्य महाप्रभु बड़े खुश हो जाते हैं और आदेश भी देते हैं, जाओ आप विद्या पुंडरीक का शिष्यत्व को स्वीकार करो। फिर गदाधर जी आते हैं और पुंडरीक विद्यानिधि उनको मंत्र दीक्षा प्रदान करते हैं। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के साथ हमेशा गदाधर पंडित जी हाँ रहा करते थे। और नीलाचल में जब रहते थे और क्षेत्र संन्यास के रूप में चैतन्य महाप्रभु के साथ, तो चैतन्य महाप्रभु उनको आदेश दिए थे कभी आप क्षेत्र छोड़ के बाहर नहीं जाना। लेकिन एक बार चैतन्य महाप्रभु नीलाचल छोड़ करके वृंदावन जब जा रहे थे तो गदाधर जी हाँ चैतन्य महाप्रभु के साथ चलने लगे। जब चल रहे थे तो ये चैतन्य महाप्रभु उनको याद कराए, आप क्षेत्र संन्यास लिए हो, हाँ आप मेरे साथ जाओगे तो बहुत बड़ी अपराध लगेगा, आपका ये क्षेत्र संन्यास में बहुत बड़ी दोष लगेगा, इसीलिए आप यहीं पर रहो। तो गदाधर पंडित जी कह रहे हैं, प्रभु जहाँ पर आप हो वही नीलाचल है, वही जगन्नाथ धाम है, इसीलिए मैं आपके आपको छोड़ के नहीं रह सकता। फिर चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर उनको अनेक बहुत समझाते हैं, फिर गदाधर पंडित जी समझ के नीलाचल में रहते हैं। और अंत समय तक चैतन्य महाप्रभु उनको तोटा गोपीनाथ जी का सेवा का भार अर्पण किए थे। आ तोटा गोपीनाथ जी का सेवा करते करते अंत समय में गदाधर पंडित जी हाँ जब वृद्ध हो गए थे, अंत समय में वो थोड़ा झुक गए थे और जो फूल की माला गोपीनाथ जी के हार में गले में डालने के लिए उनको बहुत तकलीफ हो रही थी। हाँ, इसीलिए अपने भक्तों की ये कष्ट को देख करके आज भी आप वहाँ पे जाओगे जगन्नाथपुरी में तोटा गोपीनाथ दर्शन करोगे, देखोगे गोपीनाथ जी थोड़े झुक गए हैं अपने भक्तों की हाथ से सेवा स्वीकार करने के लिए, वो अपने भक्तों की कष्ट को देख नहीं पाए क्योंकि बहुत कष्ट हो रहा था। वृद्ध के समय गदाधर जी थोड़े झुक गए थे तो वो उनका हाथ नहीं पहुँच पा रहा था गोपीनाथ जी के गले तक। तो जब देखें गोपीनाथ जी हाँ मेरा भक्त का सेवा में बहुत कष्ट हो रही है, तो स्वयं अपने भक्त के हाथ से सेवा स्वीकार करने के लिए हाँ थोड़े झुके थे। और नवद्वीप में जितने दिन रहे हाँ चैतन्य महाप्रभु गदाधर जी और नित्यानंद जी को हाँ अपने साथ साथ में रखें। और जहाँ जहाँ चैतन्य महाप्रभु लीला करते थे, कृष्ण की भूमि लीला करते थे, गदाधर जी को रुक्मिणी का लीला करने के लिए वो हमेशा आदेश देते थे। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु के साथ गदाधर पंडित जी का बहुत ही अनेक गुह्य लीला है, समय हो गया। तो गदाधर पंडित जी ऐसा कहा करते थे, जो नित्यानंद को नहीं पहचानता है, जो नित्यानंद को प्रेम नहीं करता है, मैं उनके सामने प्रकट नहीं होता हूँ क्योंकि नित्यानंद मेरा प्राण है। और जो नित्यानंद चैतन्य को मानता है और नित्यानंद को हाँ धिक्कारता है, ऐसे व्यक्ति के सामने मैं राधा तत्व को प्रकाश नहीं करता हूँ। और जब तक गोपी तत्व ये राधा तत्व प्रकाशित नहीं होता है किसी के हृदय में, मतलब ये भाव जिसके भीतर प्रकट नहीं होता है, फिर उनको ब्रजवास करने की अधिकार प्राप्त नहीं होता। यदि ब्रजवास किसी को प्राप्त करने की इच्छा है तो हमें गदाधर पंडित का आशीर्वाद आज के दिन में प्राप्त करना चाहिए। आज जैसे कोई व्यक्ति गदाधर पंडित जी को समझ जाता है, वो नित्यानंद को समझ जाता है और चैतन्य को भी समझ जाता है। और ये चैतन्य ये कलियुग में अपने को पांच रूप में प्रकाशित करके हाँ ये भक्ति तत्व को सारा संसार में फैलाए थे। अद्वैत आचार्य हाँ विष्णु तत्व जो कि भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा, जो सालेग्राम शिला पूजा किए थे, अर्चा विग्रह की शिला शिला का पूजा कैसे करना है, अर्चा विग्रह की सेवा कैसे करना है, ये तत्व को सिखाए थे। और गदाधर पंडित के द्वारा राधा तत्व कैसे होती है, राधा का महिमा कैसे होती है, वो स्वयं तो प्रकाश किए, उसके साथ साथ भी गदाधर पंडित के माध्यम से भी वो राधा तत्व को प्रकाश किए थे। हाँ, ये राधा तत्व को प्रकाश करके हमारे भीतर, हाँ, श्री राधा रानी का जो प्रेम है, ये प्रेम के बीज को अंकुरित करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा तो सारा संसार को भक्ति तत्व सिखाए। खुद ही भगवान श्री कृष्ण ये संसार में प्रकट होकर के अपने नाम को जप किए। स्वयं चैतन्य कृष्ण है, वो संसार में जो प्रकट हुए वो खुद ही अपने नाम को खुद ही जप किए। और यही जप के द्वारा भगवान का जो पांच विस्तार है, पांच तत्व है, वो तत्वों को समझने की शक्ति प्रदान की हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। और यदि कोई हरे कृष्ण महामंत्र को गंभीर के साथ स्वीकार करता है, और निश्चित रूप से चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षद को समझ पाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद।